एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स मैकब्राइड के उपन्यास डीकन किंग कॉन्ग की।
हाँ, एक कमाल की किताब।
बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो 1969 के ब्रुकलिन के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बिल्कुल दिल में उतरती है और हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है।
मैकब्राइड का अंदाज ही ऐसा है, वो लेखक और संगीतकार दोनों है ना?
हाँ, और वो चीज उनकी लिखाई में दिखती है। एक लय है, एक संगीत। द कलर ऑफ वाटर जैसी किताबों से हम जानते हैं कि वो अपनी जड़ों से, आस्था से कितने जुड़े हैं।
और यहाँ डीकन किंग कॉन्ग में वो हमें ले जाते हैं कॉजी हाउसेस, न्यूयॉर्क का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट।
एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी आसान नहीं है, पर रिश्तों की गर्माहट, समुदाय की ताकत, वो देखने लायक है।
सही कहा।
तो आज हमारा मकसद है इसी जटिल, मजेदार और मार्मिक कहानी के ताने बाने को खोलना, समझना कि ये क्या है।
और कहानी की शुरुआत होती है, आप समझिए, एक धमाके से। सितंबर 1969 की बात है, कॉज हाउसेस का प्लाजा।
हाँ,
दिन दहाड़े सबके सामने 72 साल के चर्च डीकन, जिन्हें सब स्पोर्ट कोट कहते हैं,
स्पोर्ट कोट। हाँ,
वो अपनी जेब से एक पुरानी सी रिवॉल्वर निकालते हैं और बूम, 19 साल का एक जाना माना ड्रग डीलर डीम्स क्लेमेंस उसे गोली मार देते हैं
सबके सामने।
तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि किसने किया।
नहीं, बिल्कुल नहीं, सबने देखा।
पुलिस भी जानती है।
हाँ,
असली सवाल जो पूरी कहानी में गूंजता रहता है वो है क्यों।
हाँ, क्यों स्पोर्ट कोट ने ऐसा क्यों किया? और सबसे अजीब बात,
ये कि स्पोर्ट कोट को खुद भी ठीक से याद नहीं, वो बस अपनी बनाई हुई एक देसी शराब है किंग कॉन्ग उसका जिक्र करता है।
तो यहीं से कहानी सिर्फ एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती,
इस समुदाय के रहस्यों के पड़ताल, उनके रिश्तों की, उनकी आत्मा की खोज।
और जैसे ही गोली चलती है, पूरा कॉज हाउसेस समुदाय वो जैसे एक एक अदृश्य कवच में सिमट जाता है ना?
बिल्कुल। फाइव इंस बैप्टिस्ट चर्च, जहां स्पोर्ट कोट डीकन है और प्रोजेक्ट के बाकी सब लोग, वो फौरन स्पोर्ट कोट को बचाने में जुड़ जाते हैं।
पुलिस से भी बचाना है।
हाँ, और डीम्स के गैंग से जो बदला हो सकता है उससे भी।
ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये समुदाय जो शायद बाहर से देखने में बिखरा हुआ सा लगे,
हाँ,
वो अंदर से कितना मजबूत है।
हाँ,
खासकर जब पुलिस वाले आते हैं पूछताछ करने, वो अनुभवी आयरिश अफसर जो पैक और उसका साथी पॉट्स।
और उन्हें क्या मिलता है? बस एक चुप्पी की दीवार, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं।
पैक जो इस इलाके को समझता है, वो जानता है कि यहाँ के अपने नियम है।
हाँ, वो जानता है कि यहाँ शायद शांति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। वो इस चुप्पी को एक तरह से समझता भी है।
और इस चुप्पी के पीछे एक बड़ी ताकत है, चर्च की माँ जैसी हस्ती, सिस्टर जी।
सिस्टर जी वो व्यवहारिक हैं, मजबूत इरादों वाली और समुदाय की अनौपचारिक लीडर भी।
वो स्पॉटकुट की शराब की लत से परेशान है, डांटती भी है उसे,
लेकिन जब उसे बचाने की बात आती है तो सबसे आगे वही खड़ी होती हैं। उनका किरदार दिखाता है कि कैसे समुदाय में करुणा भी है और जवाबदेही भी।
सही कहा। और इस घटना के बिल्कुल केंद्र में है खुद स्पॉटकुट, कफी जैस्पर लैम्पकिन। क्या किरदार है!
72 साल का शराबी, चर्च का डीकन, पहले बेसबॉल कोच भी था और अक्सर अपनी मरहूम पत्नी हेटी, उसकी आत्मा से बातें करता है।
ऊपर से देखो तो शायद एक भटका हुआ बूढ़ा आदमी लगे,
लेकिन उसके अंदर वफादारी और दुख का एक गहरा समंदर है। पता है, उसकी यात्रा है जैसे अपनी खोई हुई याददाश्त और जिंदगी के मकसद को फिर से पाने की।
और ये गोली चलाना, ये अजीब तरह से उसे सालों की धुंध से बाहर निकालता है।
हाँ, एक स्पष्टता के पल की ओर धकेलता है। और ये सब जुड़ा है एक भूले हुए वादे से जो उसने हेट्टी से किया था।
और दूसरी तरफ है डीम्स क्लेमेंस, वो नौजवान जिसे गोली लगी, उसकी कहानी भी कम दुखद नहीं।
बिल्कुल, एक जमाने में वो बहुत ही टैलेंटेड बेसबॉल खिलाड़ी था, स्पोर्ट कोट का ही शागिर्द।
अच्छा।
हाँ, लेकिन फिर चोट लग गई, मौके नहीं मिले और शायद सिस्टम की नाकामी भी, वो ड्रग्स की दुनिया में चला गया।
तो वो उस संभावना का प्रतीक है जो टूट गई।
हाँ, उसके अंदर का वो टैलेंटेड लड़का और बाहर का ये कठोर ड्रग डीलर, वो लगातार लड़ते रहते हैं और गोली लगना वो उसके लिए भी एक तरह का वेकअप कॉल है।
स्पॉट कोट के साथ उसका रिश्ता जो कभी पिता बेटे जैसा था, अब वो टूट चुका है।
और ये टूटन पूरे समुदाय की एक बड़ी ट्रेजेडी को दिखाती है।
इस कहानी में सिर्फ कॉज हाउसेस के लोग नहीं है, बाहरी दुनिया के किरदार भी अंदरूनी दुनिया से टकराते हैं, जैसे वो थॉमस द एलिफेंट, एलिफेंटे।
हाँ, द एलिफेंट, एक अकेला सा रहने वाला इटालियन मॉबस्टर, अपने पिता की तस्करी के विरासत में फंसा हुआ और बहुत अकेला महसूस करता है।
और उसका कॉज हाउसेस से कनेक्शन भी बड़ा अजीब है, गलतफहमी से शुरू होता है।
उसे लगता है कि डीम्स ने उसकी माँ से जुड़ी एक कीमती चीज चुराई है, एक पुरानी मूर्ति, वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ।
अच्छा।
और इस मूर्ति की तलाश उसे इस बिल्कुल अनजाने ब्लैक समुदाय के बीच ले आती है, और वहां उसे माफिया की दुनिया से बिल्कुल अलग एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है।
कमाल है कैसे बाहरी आदमी समुदाय का हिस्सा सा बनने लगता है।
हाँ, ये देखना कमाल का है।
और स्पोर्ट कोर्ट का साथी हॉट सॉसेज, वो भी एक मजेदार किरदार है।
हॉट सॉसेज, वो कहानी में ह्यूमर लाता है और दोस्ती की गर्माहट भी। उनकी दोस्ती दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं,
भले ही कभी कभी वो दोस्ती बुरी आदतों को बढ़ावा भी दे।
हाँ, ये भी है।
और हमें हैटी लैम्पकिन को नहीं भूलना चाहिए, स्पोर्ट कोर्ट की मृत पत्नी।
हैटी, वो सिर्फ यादों में जिंदा है या स्पोर्ट कोर्ट के भ्रमों में, लेकिन पूरी कहानी पर उसका असर है। वो जैसे समुदाय की नैतिक धुरी थी।
और धीरे धीरे पता चलता है कि उसका एक राज वही इस पूरी गुत्थी की चाबी है।
बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती है और स्पोर्ट कोर्ट की वो धुंधली यादें वो धीरे धीरे साफ होने लगती हैं।
फ्लैशबैक्स आते हैं।
हाँ, फ्लैशबैक दिखाते हैं कि स्पोर्ट कोर्ट और डीम्स का रिश्ता कितना गहरा था कभी, स्पोर्ट कोर्ट कैसे डीम्स के टैलेंट का दीवाना था।
तो वो अतीत की यादें आज की इस कड़वी हकीकत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती हैं।
सही कहा। और इसी बीच बाहर से खतरे भी मंडराने लगते हैं। एक तरफ तो दी एलिफेंट है, अपनी चोरी हुई मूर्ति की तलाश में कॉज हाउसेस के चक्कर काट रहा है। दूसरी तरफ डीम्स का एक साथी है अर्ल। वो डर जाता है, सोचता है डीम्स मर गया तो वो बदले के लिए एक खतरनाक हिटमैन बंच मून उसको बुला लेता है।
अरे बाप रे, तो अब कॉज हाउसेस के बीचों बीच चर्च के लोग हैं, पुलिस है, इटालियन माफिया है और एक बेरहम हिटमैन भी।
सोचिए जरा, सब एक टकराव के रास्ते पर हैं।
कितने अलग अलग धागे आकर एक ही जगह उलझ रहे हैं, और इसी उलझन के बीच खुलता है हैटी का वो राज।
स्पोर्ट कोर्ट को याद आने लगता है चर्च का वो पुराना ऑर्गन, उसमें क्रिसमस फंड के पैसों के साथ एक और चीज छिपी थी।
क्या?
एक बड़ी रकम जो सालों पहले हैटी के एक अमीर श्वेत मालिक ने वहां गुप्त रूप से रखवाई थी।
अच्छा।
और संयोग देखिए, वो मालिक कौन था? दी एलिफेंट की माँ का पिता।
क्या बात है, ये तो कमाल का कनेक्शन है।
है ना। और हैटी अपनी ईमानदारी के चलते वो पैसा लौटाना चाहती थी। उसने ये बात स्पोर्ट कोर्ट को बताई भी थी शायद मरने से कुछ पहले,
लेकिन स्पोर्ट कोर्ट पत्नी के गम और शराब में डूबा,
वो सब भूल गया।
भूल गया।
मगर डीम्स, जो चर्च में हैटी की मदद करता था कभी कभी, उसे इस राज का पता था।
ओहो।
और गोली चलने वाले दिन वो इसी पैसे को चुराने की फिराक में था।
तो स्पोर्ट कोर्ट का गोली चलाना वो सिर्फ नशे का पागलपन नहीं था, वो एक सबकॉन्शियस रिएक्शन था।
बिल्कुल, शायद यही बात है। ये उसके जहन के किसी कोने में दबी हुई याद थी जो एकदम से हरकत में आ गई।
उसने डीम्स को गोली इसलिए नहीं मारी कि उसे मारना चाहता था?
शायद नहीं, शायद इसलिए मारी कि वो उसे चर्च लूटने से रोकना चाहता था, हैटी की विरासत को अपवित्र करने से रोकना चाहता था।
एक भूले हुए गुरु का अपने भटके हुए शिष्य को बचाने का एक आखिरी हताश प्रयास।
हाँ, कितना मार्मिक है ये।
ये तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल देता है।
बिल्कुल।
और फिर आता है वो क्लाइमैक्स ब्रुकलिन वाटरफ्रंट पर।
हाँ, जबरदस्त सीन है वो। वहां सब जमा होते हैं, दी एलिफेंट अपनी मूर्ति की तलाश में, बंचमून डीम्स का बदला लेने, और चर्च के लोग स्पोर्ट कोर्ट के साथ वो पुराना ऑर्गन ले जाने के लिए जिसमें वो खजाने वाला बॉक्स है।
और फिर
एक जबरदस्त टकराव होता है, अफरा तफरी मचती है, आग लग जाती है, और उसी हंगामे के बीच स्पोर्ट कोर्ट अचानक आई स्पष्टता के एक पल में वो दी एलिफेंट की जान बचाता है।
वो क्षण उनके उस अजीब से रिश्ते को और पक्का कर देता है ना।
हाँ, और फिर उस पैसे के राज का भी खुलासा होता है जिसे पता चलता है कि कॉज हाउसेस के इन ब्लैक चर्च की महिलाओं और इटालियन माफिया के बीच एक अनजाना साझा इतिहास रहा है।
उस पूरी अराजकता के बाद एक नई तरह की शांति आती है।
हाँ, दी एलिफेंट जिसे इस समुदाय में एक अजीब सा सुकून मिला है वो अब दुश्मन नहीं रहता, एक तरह का हितैषी बन जाता है।
हैटी के खजाने का भी हल निकल जाता है
शांति से।
और डीम्स का क्या होता है?
डीम्स वो बच निकलता है, वो ड्रग्स की दुनिया से गायब हो जाता है। लेखक हमें एक उम्मीद देता है कि शायद उसे एक नई शुरुआत का मौका मिला है।
और स्पॉट कोर्ट, उसे शांति मिलती है।
हाँ, उसे आखिरकार शांति मिलती है। उसने अनजाने में ही सही हैटी से किया अपना वो हूला हुआ वादा निभा दिया है।
कहानी का अंत कोई परिकथा जैसा नहीं है।
नहीं, कॉज हाउसेस में जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, पर वो चलेगी। ये समुदाय लचीला है, टूटा नहीं है। ये दिखाता है कि जीवन अपनी सारी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ता रहता है।
और इस कहानी के धागों में कितने गहरे विषय बुने हुए हैं। सबसे पहले तो समुदाय और अपनेपन की ताकत।
हाँ, 'cause houses सिर्फ ईंट भरे की इमारतें नहीं हैं, ये एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है। यहाँ के लोग बाहरी खतरों के सामने एक हो जाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, चाहे उनमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो।
जैसे स्टोर्ट कॉर्ट को बचाने के लिए सब एक हो जाते हैं, ये दिखाता है कि समुदाय सिर्फ एक जगह रहने से नहीं बनता।
नहीं, वो बनता है साझा संघर्ष से, आपसी सहारे से और बिना शर्त स्वीकृति से। ये लोग एक दूसरे की कमियों को जानते हैं फिर भी साथ खड़े होते हैं।
दूसरा अहम विषय है आस्था, कृपा और मुक्ति का। फाइव एंड्स बैप्टिस्ट चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं है,
वो समुदाय का आध्यात्मिक दिल है। और यहाँ आस्था कर्मकांडों के कम और एक दूसरे की देखभाल करने में, गलतियों को माफ करने में ज्यादा दिखती है।
स्टोर्ट कॉर्ट को उसकी शराब की लत और गलतियों के बावजूद कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता।
बिल्कुल नहीं, और मुक्ति की संभावना हमेशा बनी रहती है, यहाँ तक कि द एलिफेंट जैसे बाहरी और कह सकते हैं संदिग्ध किरदार के लिए भी।
उसे इस समुदाय में जो स्वीकृति और अपनापन मिलता है वो उसके लिए एक तरह की कृपा ही है जो उसे बदल देती है।
ये कहानी ये भी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
हाँ, आपात रूप से बिल्कुल अलग जिंदगियां, एक बूढ़ा डीकन, एक नौजवान ड्रग डीलर, एक इटालियन मॉबस्टर, चर्च की औरतें, सब एक अदृश्य धागे से बंधे हैं।
हेटी का एक पुराना राज इन सबको एक साथ ले आता है।
हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर जिंदगी दूसरी को छूती है, ये जुड़ाव ही समुदाय का असली मतलब है।
और इसी से जुड़ा है दुख, स्मृति और अतीत का विषय। स्पोर्ट कोट हेट्टी की यादों में जीता है, द एलिफेंट अपने पिता की विरासत के बोझ तले दबा है, डीम्स वो अपने खोए हुए सुनहरे अतीत से परिभाषित होता है।
अतीत हमें बनाता है, लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि अतीत का सामना करके ही उससे उबरा जा सकता है।
हाँ, स्पॉट कोट जब हेटी से जुड़ी सच्चाई को याद कर पाता है तभी उसे शांति मिलती है। उपचार अतीत को भूलने में नहीं, उसे समझने में है।
मैकब्राइड की एक और खूबी है कि वो अपने किसी भी किरदार को मतलब पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं दिखाते।
सही कहा, स्पॉट कोट शराबी है, डीम्स अपराधी है, एलिफेंट मॉबस्टर है, लेकिन हर किरदार के अंदर एक गहरी इंसानियत है। वो त्रुटिपूर्ण है पर उनमें अच्छाई की संभावना है।
सच्ची अच्छाई शायद परफेक्ट होने में नहीं है।
नहीं, बल्कि अपनी कमियों के बावजूद सही करने की कोशिश में है। जैसे वो पुलिस वाला जो पिक, उसकी सहानुभूति, या द एलिफेंट के अंदर छिपी वो कोमलता। मैकब्राइड किसी को जज नहीं करते, वो बस हमें उनकी दुनिया दिखाते हैं।
और आखिर में वो खोई हुई क्षमता का विषय, डीम्स जैसे होनहार युवाओं का अपराध या हिंसा की दुनिया में खो जाना, ये उपन्यास की एक बड़ी ट्रेजेडी है।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे कितने डीम्स हमारे समाज में हैं जिन्हें सही मौका या सहारा नहीं मिला।
लेकिन कहानी यहाँ भी उम्मीद नहीं छोड़ती। डीम्स गायब जरूर होता है, पर शायद एक नई शुरुआत के लिए।
मुक्ति की खिड़की हमेशा खुली रहती है।
थोड़ी बात मैकब्राइड की शैली की भी करनी चाहिए, कहानी कहने का उनका अंदाज भी बहुत अनोखा है।
हाँ, वो एक ऐसे कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं जो किसी एक किरदार तक सीमित नहीं है, वो जैसे पूरे समुदाय के मन की बात जानता है।
वो हमें स्पोर्ट कोट के भ्रम भी दिखाता है, एलिफेंट का अकेलापन भी, और सिस्टर जी की चिंताएं भी।
हाँ, जैसे कोई कैमरा हो जो कॉज हाउसेस की गलियों, घरों और चर्च में घूम रहा हो और हमें सबकी सोच और भावनाओं से वाकिफ करा रहा हो। इससे पाठक का जुड़ाव पूरे समुदाय से हो जाता है।
और भाषा, उसमें एक लय है, ब्रुकलिन की बोलचाल का अंदाज है,
हास्य है और गहरा दर्द भी है। संवाद तो कमाल के हैं, तीखे, मजेदार और किरदारों के राज खोलने वाले।
प्रतीक भी बहुत इस्तेमाल किए हैं मैकब्राइड ने, जैसे फाइव इंस बैप्टिस्ट चर्च, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है।
नहीं, वो समुदाय का दिल है, एक पनागाह है। और वो वीनस ऑफ विलिंडॉर्फ मूर्ति जो एलिफेंट ढूंढ रहा है, वो भी एक प्रतीक बन जाती है, अप्रत्याशित जगहों पर छिपी पवित्रता का या मूल्य का।
और बेसबॉल,
हाँ बेसबॉल, वो स्पोर्ट कोर्ट और डीम्स दोनों के लिए खोए हुए सुनहरे दिनों का, टूटे सपनों का और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद का प्रतीक है।
मैकब्राइड इन प्रतीकों को कहानी में बड़ी सहजता से बुनते हैं और विडंबना का इस्तेमाल भी खूब है।
हाँ, सोचिए, शहर का एक डरावना मॉबस्टर अंदर से इतना नरम दिल निकलता है, या एक अनमोल खजाना चर्च के पुराने ऑर्गन में छिपा है।
ये विडंबनाएं कहानी को परतें देती हैं, उसे सपाट होने से बचाती हैं।
और हास्य, किरदारों की सनक, स्थितियों की बेतुकी बातें, मैकब्राइड हमें हंसाते भी बहुत हैं, लेकिन ये हंसी कभी किरदारों का मजाक नहीं उड़ाती।
नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत को और उजागर करती है। ये हास्य और करुणा का मिश्रण, यही इस किताब की जान है।
तो कुल मिलाकर डीकन किंग कॉन्ग पढ़ने का अनुभव कैसा है?
ये आपको अंदर तक एक गर्माहट से भर देता है। गरीबी, हिंसा, नशे जैसी गंभीर समस्याओं के बावजूद ये कहानी जीवन का, इंसानी जज्बे का जश्न मनाती है।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप खुद कॉज हाउसेस का हिस्सा बन गए हैं, इन लोगों को जानने लगे हैं, उनसे प्यार करने लगे हैं।
और ये एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ये हमें उन अदृश्य बंधनों की याद दिलाती है जो हमें एक समुदाय के रूप में जोड़े रखते हैं।
ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी दया, वफादारी और माफी कितनी ताकतवर हो सकती हैं। ये निराशावाद को चुनौती देती है।
ये किताब हमें अपने आसपास देखने को मजबूर करती है। हमारे अपने समुदायों में कौन से अनदेखे बंधन हैं, कौन से साझा इतिहास है जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं।
हम अपने समुदाय के स्पोर्ट कॉर्ड जैसे त्रुटिपूर्ण सदस्यों के प्रति कितनी कृपा दिखाते हैं।
यह साधारण लगने वाली जिंदगियों की असाधारण सुंदरता और महत्व को उजागर करती है, उन आवाजों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
अंत में शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे टूटे हुए संघर्ष करते समुदायों में भी जबरदस्त लचीलापन, प्यार और गरिमा मौजूद हो सकती है।
हाँ, और ये कि मुक्ति और जुड़ाव अक्सर वहां मिलते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते, बस हमें अपनी आंखें और दिल खोलने की जरूरत है।
बिल्कुल,
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।